வீதும் வீதம் வீரும் விராக வைபவம் சங்கமுக்தம் யசி புத்தம் கீசவம் சம்பவம் சிவம்.
ஒளி அஹிம்சா பரமோ தர்ம கீ, ஆதிநாத பகவான் கீ, மகாவீர பகவான் கீ.
एक दिन व्यतीत हो गया है, दिन में 12 घंटे नहीं होते, 24 घंटा होते हैं, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। गवेषणा की जा रही है लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आश्रय विशेष रूप से कहीं उपलब्ध नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रबंध जो गृहस्थिक है वह नहीं है, किंतु राष्ट्र का एक प्रेम, राष्ट्र का अर्थ कोई जमीन जायदाद नहीं किंतु वहां के रहने वाले व्यक्तियों की भावना और उन्हें अपने अपने धर्म कर्म के साथ जीने के अधिकार प्राप्त हो, इसलिए वह भोजन नहीं मिलते हुए भी प्रतिपल भोजन हो रहा है यह समझ करके ही चला जा रहा है। किंतु यह ध्यान रहे, काया तो काया होती है और काया में बैठी हुई है चेतना, काया के सूखने से उड़ जाती है उस हंस के समान, लेकिन कोई परवाह नहीं चल रहा है। दूसरा दिन भी निकल गया है, दो दिन निकलने के उपरांत जो बड़े प्राणी हैं वे सोचते हैं हमारा तो निर्वाह हो जाएगा, लेकिन जो सात हैं उनका क्या होगा। तीसरे दिन जब बारी आती है, मन में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लग जाते हैं। पति पत्नी आपस में बैठ करके सोचते हैं कि क्या किया जाए, जो आई हुई घड़ी है इसमें जो आत्मसमर्पित के साथ आगे कदम उठाने का संकल्प है, किंतु सात जो हैं उनका क्या होगा। पत्नी कहती है आखिर तो वंश अपना है, ध्यान रखो। सिंह है, सिंघनी है, और आज के छोटे बच्चे से ऐसे में रहते हैं, उनको भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं होती, अनुपात से थोड़े बहुत हो जाए बात अलग है। उस खून में ही इस प्रकार का संस्कार पड़ा हुआ है, वह छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। वह जो भीतर रहने वाली चेतना आत्म तत्व कभी बूढ़ी भी नहीं हो सकता और न ही वह कभी जवान रहता है, वह तो है जो है। इस काया की बात तो काया जाने, भीतर रहने वाला यदि ठीक रहेगा तो अवश्य यह काया भी साथ देगी, और नहीं भी देगी तो छूट जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन यह निश्चित बात है इस प्रकार का समर्पण अवश्य कुछ न कुछ क्रांति लाएगा। तीसरा दिन जब आया, कुछ मिला, क्या मिला, कुछ घास के धान्य मिले। आप सुन रहे हैं ना? ये क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं, घास के भी धान्य होते हैं। घास के धान्य होते हैं, कुछ घास के धान मिले। सोचा गया है दो दिन के बाद तीसरे दिन घास के मिले, संभव है और कुछ दिन के उपरांत अवश्य ओरिजिनल धान्य भी मिल सकते हैं। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय हुआ करता है, इसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें हम करते हैं और कुछ बातें कुछ होती हैं, लेकिन जब करने और होने के उपरांत जब भीतर घटित होता है उसको हम देखते हैं, सब ज्ञात होता है। जो बातें होती हैं और घटती हैं वो इतने मौलिक नहीं हुआ करती हैं जब हम उनसे साक्षात्कार कर लेते हैं। जब किसी बात की अति होती है और इति निश्चित रूप से सामने आ जाती है और इति के उपरांत निश्चित रूप से अथ प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं है उस व्यक्ति को हर्ष का और आनंद का और सुख का अनुभव तीन काल में होगा नहीं। रात के उपरांत भोर की प्रतीक्षा हो जाती है, सूर्य नारायण का दर्शन हो जाता तो उजाला का महत्व हमारे सामने आ जाता है। आज का जमाना रात दिन लाइट में बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य नारायण का कोई दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यह आंखें इन प्रकाशों के माध्यम से जो ज्योति समाप्त होती चली जाती है, उसी प्रकार की यह बात है कि जब संघर्ष में जीवन नहीं रहेगा निश्चित रूप से हमारा जीवन जीने का कोई उसकी इच्छा भी नहीं होगी और एक प्रकार से जीवन का मोल नहीं होगा। जब तीसरे दिन धान मिले, घास के मिले, उन्हीं को किसी भी प्रकार से रोटी का रूप दिया गया है, यदि बासी रोटी आ जाती है आप लोगों के सामने गड़बड़ होने लग जाता है। ताजी रोटी है, सुबह की है, लेकिन शाम को थोड़े से और उसको गर्म करवा दो। लेकिन अब धान की रोटी कैसी बनी और यह घास के धान की रोटी कैसी बनी और यह इनका तीला तीसरे दिन का आहार है और बनाएंगे, बना ली गई है। फिर इसके उपरांत पति ने कहा मैं पानी लेने के लिए जाता हूं और तुम कोई अतिथि आ जाए तो प्रतीक्षा कर लेना। भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि तीन दिन तो कुछ मिला नहीं है और घास की रोटी बनी है धान के, और उसके लिए एक अतिथि की गवेषणा, तुम प्रतीक्षा कर लो कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं और कोई व्यक्ति नहीं बनाता तो उसके लिए कहां से आएगा। मैं पानी जल्दी जल्दी लेकर के आता हूं। छोटे बच्चों को जल्दी उनके हाथ में एक 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 रोटी दी गई है थे, और इसी बीच में वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं और वहां पर कोई जंगली बिल्ली आ गई और एक बच्चे के हाथ से वो भी रोटी निकाल दी चली गई। वह लड़का रोने लगा। रोते हुए लड़के को देख करके मां कहती है बेटा मैं अपने तरफ से आदि दे दूंगा, चिंता मत कर। क्या परिस्थिति हो रही है आपके सामने आ रहा होगा, ये कोई उपन्यास की कथा नहीं है, यह घटित घटना है और यह विदेश की घटना नहीं है, यह भारत की घटना है। और कौन है यह आप जानते हैं, इसलिए मैं नाम और व्यक्तित्व को सामने रखना पसंद नहीं करता। आप लोगों के बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग हो जाए, यह मेरा वक्तव्य का ध्येय रहता है। जैसे जैसे आप लोगों को वह घटना सामने आने लग जाएगी, आपकी आंखें तो रोएंगी, मन रोएगा और वर्तमान के जीवन के साथ हम तुलना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, फिर भी हम रोते रहते हैं, किस बात की कमी है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, अड़ोस पड़ोस को भूल जाते हैं, देश विदेश को भूल जाते हैं, मित्र भाई बहन सबको भूल जाते हैं, जीव जंतु इत्यादि सबको भूल जाते हैं, केवल हम ही जीव हैं, ऐसी हमारी कल्पना हमेशा हमेशा बनी रहती है। ये निश्चित बात है, संसारी प्राणी के ऐसे संस्कार हुए हैं, होते जाते हैं मोह के कारण। लेकिन जब भारत की बात आती है, भारतीय संस्कृति की बात आती है, वहां पर देह के ऊपर उठ करके ही सोचा जाता है या देह के भीतर घुस करके ही सोचा जाता है, चेतना से जब मुलाकात होती है तब कहीं जा करके हमें ज्ञान हो जाता है कि हाँ हमारा कर्तव्य बहुत कुछ छूट गया, अथवा कर्तव्य को हमने अपने जीवन में छुआ ही नहीं, हमने अपने कदम को उस कर्तव्य के पथ पर अभी रखा ही नहीं, बोध होने लग जाता है। और जब वो पानी ले आता है, ये बात जब सुन लेता है कि इस प्रकार के हो गई, लड़के के हाथ में से यह घास की रोटी, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा, पुनः यही समस्या आ गई। लेकिन पत्नी कहती है एक एक दिन होते हैं, एक साथ एक वर्ष नहीं हुआ करता, आज की भोर कल और अलग रूप से आ सकती है, आज का दिन आज का ही लिए है, कल को पता नहीं, शाम कैसे होने वाली पता नहीं, क्योंकि किए हुए संस्कार अच्छे हैं और समर्पण है, थोड़ी सी प्रतीक्षा और करना आवश्यक है, हमें अपनी रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। कौन सी रेखा है? भाग्य की रेखा, क्या कर्तव्य की रेखा? भारतीय संस्कृति में दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक भाग्य की रेखा और एक पुरुषार्थ की रेखा, कर्तव्य की रेखा। भाग्य की रेखा दिखने देखने में नहीं आती, कर्तव्य की रेखा सामने देखने में आ जाती है, और कर्तव्य के पालन करते समय भाग्य की रेखा अपने आप ही परिवर्तित होने लग जाती है। कई बार कई व्यक्तियों के माध्यम से मुझे यह आग्रह कर दिया गया है कि महाराज कम से कम समाज के व्यक्ति कोई आ जाते हैं, अपने लिए कुछ पूछताछ करते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कुछ से कुछ तो बुद्धि का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ बताया करो, कि ऐसा ही एक व्यक्ति आकर के कहा ये महाराज हम आपके सामने हाथ दिखा रहे हैं, आप हाथ देते हैं, भैया आपका हाथ तो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखता। हंसने की बात नहीं है, हाथ मुझे दिखा रहे हो तो मैं देखूंगा, लेकिन हाथ आपका है, आपकी आंखें हैं, हाथ में क्या है आप नहीं दिखता। हम हमारे भाग्य को हाथ में देख सकते हैं और जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ये ध्यान रखो महाराज, मैं तो हाथ में रेखा हमारी ठीक है क्या नहीं है, हाथ में रेखा कहां से आई महाराज, ये भाग्य जो ललाट है, वो ललाट की जो रेखा है वह हाथ रूपी दर्पण में आ जाती है। ध्यान रखो, हाथ तो हाथ रहता है, हाथ की रेखाएं यदि बनाना चाहें तो धन की रेखा बनाना चाहो तो ब्लेड ले लो और काट लो थोड़ा सा, अपने यहां पर रेखा बन जाएगी, इसका नाम रेखा नहीं। रेखा को हम प्राप्त करा सकते हैं, उत्पन्न करा सकते हैं, और रेखा को हम परिवर्तित कर सकते हैं, यदि हमारे पास पुरुषार्थ की रेखा कर्तव्य की रेखा सामने है तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। हम अतीत को और अनागत को गौण करके यदि वर्तमान में एक दृढ़ संकल्प के साथ पैर रखते हैं तो निश्चित है मेरा ही क्या जीवन, पूरा पूरा समग्र समाज का परिवर्तन संभव है। लेकिन संकल्प में दृढ़ता चाहिए, संकल्प में विश्वास चाहिए, संकल्प के साथ समर्पण चाहिए और संकल्प के साथ कुछ आदर्श चाहिए। वह संकल्प के बाद कदम जो उठे वह आदर्श की ओर बढ़े और जिस ओर आदर्श चला गया उस ओर यदि हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दृढ़ता बनी रहेगी और आदर्श अन्यत्र चले जाए और हम संकल्प ले लें और आदर्श के विपरीत कदम बढ़ाएं, तीन काल में संभव नहीं। समाज की बात हम करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते नहीं। देश की बात हम करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि संकल्पित हो जाए अपने मन के माध्यम से तो देश और कोई वस्तु नहीं है। समाज का अर्थ समूह होता है और समूह एक के बिना नहीं होता, एक एक मिलकर के ही समूह का निर्माण, समाज का निर्माण होता है। एक व्यक्ति के मन में जो विचार है उसी प्रकार के यदि विचार, गंदे विचार औरों के भी होंगे तो वह गंदों का, गंदे विचारों का एक समूह होगा और उसके द्वारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। बूंद की यदि कीमत है तो सिंधु का निर्माण हो सकता है। यदि सिंधु की निर्माण होने की प्रक्रिया जिसको ज्ञात नहीं है वह व्यक्ति बहुत बड़ी भूल कर रहा है, मूल में भूल है। जो व्यक्ति बिंदु की रक्षा नहीं करता वह सिंधु की सपना देखना चाहता है, वह सपना या दीवार भी हो सकता है, रात की भी हो सकता है, वह कभी साकार नहीं होने वाला। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है एक एक विचार के साथ वह ऐसे आचार के लिए संकल्प करें, निश्चित रूप से यह हो सकता है। गांधी जी ने वही एक संकल्प लिया था, उसका परिणाम क्या निकला आपके सामने है। आप बहुत संख्या में आज विद्यमान है, इतनी ही संख्या नहीं, जहां कहीं से भी आप आए उस संख्या को भी जोड़ करके आप बात करिए और प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये यदि भाव जागृत हो जाएगा, क्या सरकार है समझ में नहीं आता मुझे। एक व्यक्ति ने कहा कि कल हम और काम करने जा रहे थे, अभी कहा ना, किंतु पानी ने धोखा दिया। यदि मेरे सामने माइक होता तो उसी समय जवाब देता, लेकिन क्या करें, उन्होंने कह ही दिया, पानी ने धोखा दिया। धोखे से भी नहीं कहना चाहिए पानी ने धोखा। पानी ने समय पर बरसा इसलिए सारे सारे आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यदि बरसात नहीं होते तो खाना नहीं मिलता और खाना नहीं मिलता तो पाटोदी यहाँ पर नहीं आ पाते आप। पानी ने धोखा दिया ये स्वप्न भी में नहीं कहना चाहिए आपको, तो नहीं कहना चाहिए। केवल आप पंडाल बनाने के लिए पानी ने धोखा दिया ऐसा कहा नहीं। पानी के माध्यम से तो प्राणी सारे सारे जो है आज जीवित है, ये बात अलग है। आज का प्राणी जिस समय चाहता उसी समय टूंटी में से पानी निकल जाता ना, निकलना चाहिए, बंद हो तो बंद, चाहे तो चाहे, ऐसा नहीं हुआ करता। थोड़ी से संघर्ष करना सीख लीजिए, छत्ता लगाना हो तो लगा लीजिए, नहीं तो थोड़ी से भीग जाए। ऊपर से भीगने से कोई मतलब नहीं होता, थोड़े से भीतर से भी भीगने का प्रयास किया करो, तभी यह होगा। ऊपर का पानी यदि भीतर तक पहुंच जाएगा और सारा का सारा मलबा बाहर निकल जाएगा, निश्चित रूप से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र के रूप में उभर करके आता है। और आज तक था ये और अभी भी इसी का नंबर है, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसे नंबर सामने आ गए हैं जिसके कारण यह सारा सारा धूमिल सा हो रहा है। हाँ, मैं आपको वहां पर आकृष्ट करना चाहता हूं, तेले के समय पर यह बात हो रही है, घास की रोटी बनी ही है बात हो रही है, एक बच्चे के हाथ से रोटी बिल्ली ने छीन ली यह बात हो रही है, पति पत्नी के बीच में यह बात हो रही है, लेकिन पत्नी हमेशा हमेशा पति को जागृत कर रही है। प्रथम वक्ता ने कहा था, हम सारे सारे माताओं की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं आचार्य श्री को कि माता भी है तो और पिता नहीं है क्या, दोनों का नंबर आना चाहिए। केवल भारत भारत में माता माता ही है ऐसा तो है नहीं, पिता भी तो है। माता और पिता दोनों उत्पन्न दोनों हो जाएंगे तो बच्चे बाल बच्चे भी सारे सारे आबाल वृद्ध बाल गोपाल सारे के सारे एकत्रित होकर के एक आवाज के साथ करेंगे। सरकार को आप नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार स्वयं आप हैं और दूसरे के हवाला क्यों दे रहे हो। मैं सुनता आ रहा हूं राजनीति ही ऐसी चल रही है, न राजा है न नीति है कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी संतों को कहा जाता है कि महाराज आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम सोचते हैं पार्लियामेंट में और सारे सारे उन व्यक्तियों को 543 कितने हैं भैया 543 उनको समझाने का प्रयास करते हैं, भाई यहीं से तो वहां पर गए हैं ना, यहाँ यदि हो जाए महाराज तो ठीक है। एक वक्ता ने तो ये कहा कि महाराज आपको दिल्ली आना है, भैया यहाँ पर यदि काम होने की संभावना नहीं है तो दिल्ली आने के उपरांत क्या काम होने वाला, मुझे बताओ। यहीं से तो वह सारे सारे 543 तो पहुंचे हुए हैं, उन्हीं को क्यों आप समझ रहे हो। प्रत्येक सांसद का यह कर्तव्य होता है, और सांसद यहां वहां का नहीं है, यहां के सांसद है। यहां की जनता यदि उनको कष्ट देती है तो निश्चित रूप से वह कहेगा, यदि वो संस्कार आप उनमें डाल देते हैं, यदि आप शर्त के साथ उन्हें वोट देते हैं उनके समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको करना पड़ेगा। यदि नहीं करता है तो भैया आप कुर्सी से नीचे उतर आइए, ऐसा आप कह सकते हैं, आपके पास कोई भी जोश ही नहीं। केवल आज माइक के सामने ही जोश रहता है, बाकी कुछ भीतर से जोश ही नहीं रहता। और माइक के तात्व तब तक जोश है जब तक करंट है, नहीं तो फिर वो भी जोश नहीं है। क्या हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं, आवाज उठनी चाहिए। अरे आवाज को सुनने की समझने की क्षमता रखना चाहिए, आवाज कहां तक उठाए, इतनी आवाज नहीं उठाना चाहिए जिसके द्वारा आपके कान बहरे हो जाएं। सुनने की क्षमता भी तो रखना चाहिए, हम इतनी आवाज तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपकी कानों की रक्षा मुझे करना है, क्योंकि मुझे कल सुनाना है, आप नहीं सुनेंगे तो कहां से सुनाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, आप अपनी चेतना को जागृत कर दीजिए। और वह तीसरे दिन की बात है, पत्नी ने कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, अभी जल्दी मत करो। पति ने कहा कि अब मेरा साहस नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो यहां पर है लेकिन सारी जनता वहां पर है, उनके ऊपर क्या होगा पता नहीं, दुर्व्यवहार होगा तो मुझे ही उसका श्रेय मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं जो आक्रमण हुआ है उस व्यक्ति के पास जा करके मैं हाथ मिला लूं और पूरी राष्ट्र की रक्षा हो जाए, प्रजा की रक्षा हो जाए। नहीं, पत्नी कहती नहीं, कोई न कोई अवश्य आएगा और निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा। और यही बात हो गई, यूं बात हो ही रही थी और उस समय आकर के एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु सेवक खड़ा है चरणों में और सेवक के लिए अवसर प्रदान कर दीजिए, मैं वहां पर रहूं और आप यहां पर रहें मेरे लिए पसंद नहीं है, और आपकी सारी सारी निधि है, जितनी चाहिए उतनी निधि आप ले सकते हैं लेकिन आपको यहां पर नहीं रहना है, आपको वहां पर आना है और जो आक्रमण हुआ है उसको लौटाना है, और आप लौटा सकते हैं, यदि आप लौटाने के लिए नहीं आएंगे तो संस्कृति का कोई भी सवाल ही नहीं उठता, वहां पर कौन सी संस्कृति आएगी पता नहीं। इसलिए इस संस्कृति के दीपक को आपको सुरक्षित रखना है, जाज्वल्यमान रखना है। और की दृष्टि से यह कथा पढ़ने के लिए मिली थी, शायद संभव है आप लग भी पढ़े लिखे हैं तो कोई न कोई कक्षा में यह कथा तो आपको भी सुनने में मिली होगी।
मिली है, और वो व्यक्ति जो खड़ा है और प्रभु कह रहा है और वो कह रहा है कि यह धन आपका है, ये धन आपका है, कौन कह सकता है? वही कह सकता है जिसकी हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव बना रहता। राष्ट्र का अर्थ केवल सत्ता नहीं हुआ करता, किंतु राष्ट्र का अर्थ जितने प्राणी हैं उसका नाम है। 2000-3000 किलोमीटर का नाम भारत नहीं है, किंतु इस इर्द गिर्द इस परिधि में रहने वाले करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जो जनता है उस सारी जनता का एक समूह का नाम यह राष्ट्र है। उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसे संस्कार ही नहीं दिया कि मैं इस धन को मेरा कह दूं। इतना अवश्य मैं आपका एक सेवक हूं, समय पर एकत्रित किया गया है और वह इसीलिए ही किया गया है। बाकी जो है एक बीत का यह पेट है, इसने खाने के लिए इसके पास जगह ही नहीं और खाना जुलूम माना जाता है, मैं खा नहीं सकता। यह राष्ट्रीय धन है, यह प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार में संस्कार डाले गए हैं कि हमारा पूरा धन अपना नहीं। सर्वदत्ती नाम का एक प्रकरण आता है, आचार्यों ने संतों ने अपने पुराण ग्रंथों में आचार संहिता में यह रखा है, कोई भी व्यक्ति नागरिक है अपने परिवार चलाता है और चला करके जब वह संन्यास्त होना चाहता है उस समय पूरा का पूरा धन का मालिक अपने संतान को बना करके चला जाता है और संतान को कह देता है इस धन को कभी भी बेचना नहीं, इसमें और मिला करके उसको दान में लगाना। और यह सर्वदत्ती का क्रम हमेशा हमेशा परंपरा से चलता रहे, यहाँ की नदी आगे जाएगी, वहां की नदी आगे जाएगी। यहाँ के व्यक्ति ऐसा न सोचे यह हमारी जमीन में है इसलिए इस नदी को हम बंद कर दे, बंद करके देख लो देखेंगे क्या होता है। थोड़ी देर के लिए भी आप नदी का थोड़ा सा पानी संग्रहित कर देते हैं तो बाढ़ की संभावना हो जाती है, पानी ज्यादा गिर जाता है तो ये ध्यान रखना चुनाव बंद हो गए वहां पर होशंगाबाद में। इसका परिणाम है नर्मदा कुपित हो गई चुनाव के कारण और वह उफन करके आ गई, चुनाव बंद कर दो, बंद करना पड़ा। जो वोट डालने वाले नहीं आएंगे तो कौन लड़ेगा बताओ, खड़ा कौन होगा? और यही दशा हो गए, वह पानी रुक नहीं सकता, पानी रुक नहीं सकता तो संग्रह ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो प्रलय होगा। यह जल का एक बात उदाहरण में दे रहा हूं, जब ज्यादा धन एकत्रित होगा तो वहां भी इसी प्रकार का प्रलय होगा और अन्याय का धन यदि करोगे तो और इससे भी बढ़कर के प्रलय होगा। इसलिए उस धन का जैसा चाहिए उसी के अनुसार उपयोग करना चाहिए। मैं उपयोग करना चाहता हूं प्रभु, हमारे लिए हमारी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। पत्नी देखती है पति की ओर, पति देखता है पत्नी की ओर और वह सामने खड़ा हाथ जोड़ करके उन दोनों को देखता है और दोनों के आंखों में से पानी छलक रहे हैं। वह गिड़गड़ाने लगा, मेरे अब सेवा को स्वीकार जल्दी जल्दी करो। वो कौन थे? उनका नाम आप उद्घाटित करना चाहेंगे, वह भामाशाह था। वो कौन था? वो भामाशाह था। उनका कौन सा धर्म था? जैन धर्म था, लेकिन राष्ट्र धर्म के लिए वह जैन धर्म हमेशा हमेशा समर्पित होकर के चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को वह खिला करके बर्बाद में खाने के वह संस्कार लिए हुए हैं। आज के जैनियों को क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आया, ये कहां से हवा लग गई है, अपने ही अपने नाम से सारे सारे कर रहे हैं लेकिन राष्ट्र के नाम से कोई करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि राष्ट्र के नाम से करें तो उसका भोक्ता कौन होगा, वितरण करने वाला कौन होगा? यह समस्या है। आज लोकतंत्र बहुत भयानक एक वस्तु है, वह सहायक तब हो सकती है जब नियंत्रण में जनता रहती है, अन्यथा अनियंत्रित जनता कभी भी लोकतंत्र के अधिकारी नहीं हो सकते। 50 वर्ष निकल गए, आज यह नियंत्रण की बाढ़ समाप्त हो गई,
इसलिए ऐसा हो रहा। पैसे की कमी नहीं है, राष्ट्र प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संविधान के सूत्र हैं उसका संचालन करने वाला व्यक्तित्व नहीं है। गांधी जी जैसे एक व्यक्ति और आ जाए तो शांत हो सकता है, लेकिन गांधी जी अब ये भारत देश में आना कानी करेंगे, आने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। महावीर भगवान तो बहुत दूर की बात है, गांधी जी भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी के नाम लेने वालों की संख्या यहां पर बहुत है और स्वयं को गांधी कहने वाले भी हैं। ऐसी स्थिति में वो गांधी को कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि यह भारत अब बदल चुका है। जब उन तीनों चारों व्यक्तियों के सामने वह भामाशाह ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, पूरी पूरी धन को संपदा को लेकर के वह राणा प्रताप। यह